आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। मोरक्को की गलियों में दिखती है दिल्ली। मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी है फेज। इस कस्बे में तकरीबन 900 गली कूचे हैं। इनमें घूमिए तो लगता है कि भारत के किसी पुराने शहर में चहलकदमी कर रहे हैं। कल्याण चटर्जी की रिपोर्ट। नॉर्थ अफ्रीका का एक खूबसूरत देश मोरक्को, एक से बढ़कर एक देखने लायक जगह। यहाँ की शिल्पकला में अरबी और यूरोपीय संस्कृतियों की भी छाप नजर आती है, जो इनके सौंदर्य को ले जाती है एक नए मुकाम पर। यहाँ आने वाले हर सैलानी की ख्वाहिश होती है फेज अलबाली देखना। मेरी भी वही थी। मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी है फेज। इस कस्बे में तकरीबन 900 गली कूचे हैं। इनमें कार लेकर घूमने का ख्याल बेमानी है। कुछ गलियां तो इतनी तंग हैं कि कार छोड़िए एक साथ दो आदमियों के भी गुजरने की गुंजाइश नहीं। कई जगह सिर्फ दोपहर तक धूप दिखती है, जब सूरज की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं। ये चीज भारत के कई पुराने शहरों की याद दिलाती है, खासकर मध्यकालीन युग में बसे दिल्ली और हैदराबाद की। बीकानेर या जैसलमेर जैसे राजस्थानी शहरों की बसावट भी ऐसी ही है। हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे फेज बिल्कुल घर जैसा लगा। नॉर्दर्न मोरक्को का ये शहर हजारों साल पुराना है, करीब करीब दिल्ली के मेहरौली का समकालीन। भारत में लोग मोरक्को से अनजान नहीं, लेकिन कुछ ही लोग इसे नक्शे पर खोज पाएंगे। पुरानी पीढ़ी के लोग फेज टोपी से जरूर वाकिफ होंगे, जिसका नाम मोरक्को के इसी खूबसूरत शहर से जुड़ा है। फेज टोपी लाल रंग की होती है, झालर वाली। 19वीं सदी में उस्मानी तुर्कों ने इसे काफी मशहूर बना दिया था। आज भी उत्तरी अफ्रीका में लोग इसे पहनते हैं, हालांकि मुझे पूरे शहर में फेज टोपी पहने कोई शख्स नहीं दिखा। अंग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के भारत में काफी मुरीद हैं। उनका एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें मोरक्को का भी जिक्र है। मुख्य पात्र पोर्शिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखने वालों में यहाँ का राजकुमार भी शामिल होता है। भारत में एक और शख्स को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता। लेकिन कुछ एक को ही पता होगा कि बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। उन्होंने मक्का, भारत और चीन घूमने के लिए करीब 50,000 किलोमीटर का सफर किया। वो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में भारत आए थे। तुगलक ने उन्हें कुछ वक्त के लिए काजी यानी जज भी नियुक्त किया था। मोरक्को में इस्लाम का प्रभाव अरब वासियों के आने के बाद बढ़ा। वैसे यहाँ बर्बर की आबादी ज्यादा है, जो मोरक्को के मूल निवासी हैं। उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है। इब्न बतूता भी बर्बर थे। मोरक्को के टंगेर से दक्षिण स्पेन के अलजैकिरास या जिब्राल्टर का सफर महज 35 मील दूर है। ये अफ्रीका को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे करीबी किनारा है। टंगेर से थोड़ा पूरब जाने पर क्यूटा है। ये वैसे तो अफ्रीकी सरहद में आता है, लेकिन इस पर अभी भी स्पेन का कब्जा है। भारत में हॉलीवुड फिल्मों के शौकीनों के लिए 1942 में रिलीज कैसा ब्लांका का नाम नया नहीं होगा। हम्फ्रे बोगार्ट और इंग्रिड बर्गमैन के अभिनय से सजी ये फिल्म युद्ध और प्रेम की पृष्ठभूमि पर बनी है। मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है कैसा ब्लांका। अटलांटिक तट पर स्थित इस शहर को बसाया था फ्रांसीसियों ने। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हुआ, तो कई फ्रांसीसी यहां से अमेरिका भाग गए। मोरक्को में हिंदी फिल्मों के सितारे भी काफी मशहूर हैं। शशि कपूर और शम्मी कपूर से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में यहाँ लोग बड़े चाव से देखते हैं। यहाँ के दुकानदारों को भारत के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। इसका इस्तेमाल वो भारतीय ग्राहकों से सौदेबाजी में बखूबी करते हैं। हम माराकेश से करीब आधे दिन का सफर तय करके फेज पहुंचे। जब ट्रेन से बाहर निकले तो शाम तकरीबन ढल चुकी थी। अगर मोरक्को के ट्रेन और स्टेशन की तुलना भारत से करें तो उन्हें थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। स्टेशन के बाहर के माहौल ने मुझे पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन की याद दिला दी। बिल्कुल वैसे ही कारों और टैक्सियों की भीड़। स्टेशन के बाहर हमने अजादीन को अपना इंतजार करते पाया। वो हमारा मेजबान था, अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी। अजादीन हमें अपने घर डार बिरादा ले गया। अगली सुबह हम ताजी हवाओं के झोंके के साथ घूमने निकले। अजादीन ने हमारी सहूलियत के लिए एक गाइड हायर कर लिया, उमर। उसकी उम्र कोई 50 साल रही होगी, एकदम दुबला पतला शख्स। हमने अपना सफर अजादीन के घर के सामने वाली पथरीली सड़क से शुरू किया। उमर अपनी काबिलियत जाहिर करने के लिए बताता है कि गलियों की भूल भुलैया कुछ 100 मीटर के बाद शुरू होगी, लेकिन हमें इम्प्रेस करने के चक्कर में वो भूल जाता है कि हम किसी पश्चिमी देश से नहीं बल्कि भारत से आए हैं, जहां गलियां जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हैं। उनके हर कोने को याद रखे बिना तो भारत में गुजारा भी नहीं हो सकता। कुछ गलियां सच में काफी संकरी थीं। लोग अब भी पुराने मकानों में ही रहते हैं। गंदगी दूर करने के लिए सीवर लाइन जरूर बिछ गई है। कई इलाके बिल्कुल शांत हैं, लेकिन चमड़े के बैग, आभूषण, कपड़े, मोबाइल फोन, इत्र और खाने पीने के सामान बेचने वाली दुकानों पर अच्छी चहल पहल रहती है। ये इलाके हमेशा भीड़ भाड़ और शोरगुल से गुलजार रहते हैं। बुजुर्ग हुड के लंबे जिलवा पहनना पसंद करते हैं। नौजवान वर्ग जीन्स और जैकेट्स को तरजीह देता है। यहाँ भारत के मुकाबले साफ सफाई का काफी ख्याल रखा जाता है। आमजन की मूलभूत सुविधाओं वाली चीजें भी हर जगह उपलब्ध रहती हैं। फेज में जिंदगी का पहिया दो उद्योगों के इर्द गिर्द घूमता है, पर्यटन और चमड़ा। यही वजह है कि 14वीं शताब्दी का अल अतराइन मदरसा दिखाने के बाद जब उमर हमें चौरा टेनरी ले गया तो हमें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। ये फेज में चमड़े के तीन सबसे बड़े कारखानों में से एक है। तंग गलियों से गुजरकर अल अतराइन मदरसा देखना अपने आप में खूबसूरत एहसास है। प्लास्टर और नक्काशीदार लकड़ी में उत्कृष्ट इस्लामी डिजाइन से मदरसे की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इसे देखने हर रोज सैकड़ों सैलानी आते हैं। फिर हम चौरा टेनरी गए। यहाँ कई बड़े टब हैं जिनमें जानवरों की खाल भिगोई और रंगी जाती है। इसके बगल में एक मॉल है जहां मोरक्को के मशहूर बैग, जूते और कपड़े बिकते हैं। ये देखने के लिए अनूठी जगह हो सकती है, बशर्ते आपके अंदर बदबू बर्दाश्त करने की क्षमता हो। यहाँ नाक के नीचे पुदीने की पत्तियां रगड़ने की सलाह दी जाती है, जिससे दुर्गंध का एहसास कम हो जाता है। आप सहूलियत के हिसाब से रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर अनूठे अनुभव की चाह रखने वाले भारतीयों के लिए मोरक्को जाने लायक जगह हो सकती है। ये हर तरह के बजट वाले सैलानी के लिए मुफीद है। यहाँ के कस्बों या वॉल्ड सिटीज में होमस्टे का एक्सपीरियंस आपको ताउम्र याद रहेगा।
सिर्फ यही है देश और दुनिया की हर जरूरी नॉलेज, दिलचस्प जानकारियां और सार्थक मनोरंजन। सुने या पढ़ें और रहें दूसरों से दो कदम आगे हर रोज। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारत गोल्ड.com पर।